उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा अमनि जागे भकत समूह लोया साथे गेल नगर ब्राजे भकत समूह लोया साथे गेल नगर ब्राजे ताथे ताथे बाजल कोल घन घन ताहे झांझर रो तथे तथे बाजल खोल घन घन ताहे झांझर रो प्रेम ढला ढला सोनरंग चरण नो पुरबाजे सुनरंग चरण नो पुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोल रे बदन भोरी मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोल रे बदन भोरी मिछ निदा वश गेल रे राति दिवस शरीर साजे गेल रे राति दिवस शरीर साजे एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भवन के हो मन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भवन के हो
Thank you.
ଏବେ ନ ଭଜିଲେ ୟଶୋଦା ସୁତ ଚରମେ ପଡ଼ି ପେଲା ଯେ ଏବେ ନ ଭଜିଲେ ୟଶୋଦା ସୁତ ଚରମେ ପଡ଼ି ବେଲା ଯେ ଉଦିତ ତପନ ହୋଇଲେ ହସ୍ତ ଦିନ କେଲେ ବୋଲି ହୋଇବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଉଦିତ ତପନ ହୋଇଲେ ହସ୍ତ ଦିନ କେଲ ବୋଲି ହୋଇବେ ବ୍ୟସ୍ତ ତବେ କେନ ଏବେ ଅଲସ ହୋଇ ନ ଭଜରେ ଦୟରାଜେ ତବେ କେନ ଏବେ ଅଲସ ହୋଇ ନ ଭଜରେ ଦୟରାଜେ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ଜାନ ସାର ତାହେ ନାନା ବିଧ ବିପଦ ଭାର ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ଜାନ ସାର ତାହେ ନାନା ବିଧ ବିପଦ ଭାର ନାମାଶ୍ରୟ କରି ଯତ୍ନେ ତୁମେ ଥାକ ଆପନ କାଜେ ନାମାଶ୍ରୟ କରି ଯତ୍ନେ ତୁମେ ଥାକ ଆପନ କାଜେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କାମ ଜଗତ ଆସିଏ ମଧୁର ନାମ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କାମ ଜଗତ ଆସିଏ ମଧୁର ନାମ ଅବିଦ୍ୟା ତିମିର ତପନ ରୂପେ ହୃଦଗଗନ ବିରାଜେ ଅବିଦ୍ୟା ତିମିର ତପନ ରୂପେ ହୃଦଗଗନ ବିରାଜେ સુધા કરિયા પાન જોડાઓ ભક્તિ વિનોદ પ્રાણ કૃષ્ણ નામ સુધા કરિયા પાન જોડાઓ ભક્તિ વિનોદ પ્રાણ નામ બિના કિછુ નહીં કોવાર ચૌદ ભુવન માજે નામ બિના કિછુ નહીં કોવાર ચૌદ ભુવન માજે ઉદિલ અરુણપુર ભાગે દ્વિજમણિ ગોરામણિ જાગે ભક્ત સમૂહા લોહિયા સાથે ગેલા નગર વ્રજે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra.
jai gauranitai jai gauranitai gauranitai jai gauranitai jai jai prabhupad 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 jai prabhupad Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो पिछले कई दिनों से गौर पूर्णिमा के उपलक्ष में गौर कथा चल रही है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सात प्रहरीय भाव की लीला, जिसे महाप्रकाश लीला भी कहते हैं, वो उन्होंने प्रकट कराई, जिसमें कि उन्होंने अपने भक्तों को विशेष कृपा प्रदान की। जितने भी उनकी इच्छाएं थीं वो सब पूर्ण कर दी। विशेष करके सबको उन्होंने शुद्ध प्रेम प्रदान किया और इस महाप्रकाश लीला के दौरान उन्होंने अनेक उनके अवतारों के रूप प्रकट कराए भक्तों के सामने। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि मुरारी गुप्त के सामने उन्होंने श्री रामचंद्र का रूप प्रकट कराया, श्रीधर खोलावेचा के सामने कृष्ण बलराम का रूप प्रकट कराया, और इस महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये स्पष्ट दर्शाया कि वो स्वयं भगवान हैं। दूसरे समय वो अपने आप को भगवान कह के पेश करना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, परंतु महाप्रकाश लीला के समय खुलेआम उन्होंने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। तो एक के बाद एक वो भक्तों को बुलाते गए। जैसे जैसे भक्त आए उनके सामने, उन्होंने उनको ऐसे घटनाओं का स्मरण कराया जो कि शायद वो भक्त भूल भी चुके होंगे या नहीं भी भूले होंगे, परंतु उन घटनाओं में महाप्रभु ने उनको बतलाया कि कैसे वो स्वयं आए थे भक्तों की मदद करने के लिए, परंतु वो भक्त उस समय भगवान को पहचान नहीं पाए थे। तो जब भक्तों को वो याद दिलाया वो घटना, और उस समय वो उनको ये ज्ञात भी हुआ कि स्वयं भगवान उनकी मदद करने के लिए आए थे, तो भाव विभोर होकर वो जमीन पर गिर पड़े। फिर महाप्रभु ने उनको होश मिलाकर उनके मुख से उनकी ही स्तुति कराई अपनी स्तुति कराई और ऐसे एक एक करके सारे भक्तों की भक्त जो कतार में थे एक के बाद उनका गुणगान हुआ, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। कल हम मुरारी गुप्त और श्रीधर खोलावेचा की चर्चा कर रहे थे और इसके बाद श्रीधर खोलावेचा का गुणगान तो वो करते रहे, उसके बाद हरिदास ठाकुर का गुणगान करते रहे। हरिदास ठाकुर से अंत में महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, वैसे तुम्हारे शरीर में मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हें सम्मान देता है वो मुझे सम्मान देता है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। तुम शुद्ध भक्त हो, मेरे नित्य पार्षद हो, ऐसे खूब प्रशंसा की श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के। उस समय वहाँ उपस्थित जो भक्त थे उन सबको बड़ा विस्मय हुआ कि हरिदास ठाकुर का गुणगान किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। कोई कहने लगे, ऐसे प्रतीत होता है कि ये हरिदास ठाकुर तो साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। कोई कहने लगे, ऐसे लग रहा है कि हरिदास ठाकुर साक्षात प्रह्लाद के प्रकाश हैं। ऐसे सारे भक्त लोग भी हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जाति, कुल, धन, विद्या, बल, सौंदर्य आदि ये हमारे भक्ति के पथ में रुकावटें बनती हैं, परंतु यदि इन सब को होने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर नम्र रहता है तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास विद्या, बल, धन आदि सब होता है तो ये स्वाभाविक है, और ऐसे अक्सर देखा जाता है दुनिया में कि व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, एक अभिमान हो जाता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, कितनी विद्या है मुझ में, कितना बल है, कितनी प्रतिष्ठा है, मेरा कितना ऊंचा जन्म है। ऐसे अहंकार होना तो स्वाभाविक है, और जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है वो तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन इतना सब होने के बाद यदि किसी व्यक्ति के हृदय में नम्रता है तो ये बहुत अद्भुत चीज है। नम्रता एक ऐसा धन है जो आदमी को वास्तव में धनी बनाता है, निर्धन को धनी बनाता है और धनी को निर्धन बनाता है। दुर्भाग्यवश लोग इस दुनिया में केवल धनवान होना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सच्चा धन है दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो गुणवान होने से ही व्यक्ति वास्तव में धनवान होता है, परंतु लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई गुणवान नहीं होना चाहता, केवल धन के पीछे सभी लोग भागते हैं। सही धन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एक ही चीज है जो भगवान को जीत सकती है और वो है तीव्र लालसा भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब ऐसी तीव्र लालसा होगी तो स्वाभाविक ही जितने भी अन्य दिव्य गुण हैं वो भी प्रकट हो जाएंगे। एक अहंकारी व्यक्ति भगवान के प्रेम के लिए तीव्र लालसा हृदय में नहीं रख सकता। तो जब तीव्र लालसा होगी तो भगवान ऐसे लालसा से खरीदे जा सकते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। श्रील रूप गोस्वामी अपने पद्यावली में बताते हैं कि यदि किसी को ये कृष्ण भक्ति के रस का पान करना है निरंतर, तो उसे ये कृष्ण भक्ति के रस को जल्दी से जल्दी खरीद लेना चाहिए, जहां से भी वो उपलब्ध क्यों ना हो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ऐसा रस उपलब्ध कहाँ है, कौन से दुकान से खरीदा जा सकता है। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसको खरीदने के लिए एकमात्र एक मूल्य है, और वो है लौल्यम या लालसा। ऐसे लालसा से भगवान श्री कृष्ण को खरीदा जा सकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ऐसी ही लालसा दिखाई देती थी। तो वृंदावन दास ठाकुर जब सारे भक्तों का वर्णन करते जा रहे हैं, तो ये सारे दिव्य गुण इन भक्तों में दिखाई पड़ते हैं। तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों से हम सीख सकते हैं कि हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना चाहिए। एक बात ये है कि हम तत्व पढ़ते हैं, वो भी आवश्यक है, जानना, पढ़ना, सुनना, साथ साथ में वैष्णव सदाचार, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही आवश्यक है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे सदाचार से प्रसन्न होते हैं, और फिर तत्व का निरूपण तो अपने आप स्पष्टीकरण हृदय में हो ही जाएगा। भगवान की कृपा को आकृष्ट करते हैं ऐसे सद्गुण। तो इसलिए सदाचार, वैष्णव सदाचार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। केवल जप करने से या केवल सेवा करने से हम वास्तव में वैष्णव नहीं बनते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के उपदेश हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि सच्ची जो वैष्णवता है वो मनोवृत्ति की बात है और हमारे व्यवहार की बात है। क्योंकि व्यवहार क्या चीज है? केवल हमारे मनोवृत्ति का, हमारे मानसिक स्थिति का बाहरी प्राकट्य है बस। जो हमारे मन में है वही जीभ पर आएगी, जो जीभ पर है उसी को हम कृति में लाएंगे। तो ऐसे ऐसे वर्णन हमें सुनने को मिलते हैं चैतन्य भागवत और चरितामृत से कि हमें आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं क्या दुनिया में। क्योंकि साधारण तौर से हम जब दुनिया में उठते बैठते हैं तो हम अन्यों में दुर्गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, क्योंकि ये कलयुग का स्वभाव ही ऐसे है, गुण ही ऐसे है। कलो दोष निधे राजन, दोषों की निधि है। फिर भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का वर्णन सुन के हमें प्रेरणा मिल सकती है कि हाँ, ऐसे भी भक्त होते हैं और ऐसे हमें बनना चाहिए। ये हमारे आदर्श हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो तो क्या संभव नहीं है। तो फिर हरिदास ठाकुर के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि एक बार रात का समय था, ये मेरे प्रकट होने के पहले की बात है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले, क्योंकि अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो आयु में बहुत बड़े थे। बल्कि ऐसे कहा जाता है कि वो प्राय 50 वर्षों से बड़े थे चैतन्य महाप्रभु के। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था उस समय अद्वैत आचार्य बुढ़ापे की ओर चल रहे थे, मतलब 50 वर्ष की आयु थी। और जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के लीलाओं को प्रकट करना आरंभ किया तो उस समय महाप्रभु की आयु करीब करीब 16 साल की थी। और फिर 24 साल के आयु में उन्होंने, 16 से 20 साल के बीच में थी, और उसके बाद 24 साल की आयु में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया और वो जगन्नाथपुरी में रहने चले गए। उसके बाद सारे बंगाल के वैष्णव प्रतिवर्ष बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु का संग पाने के लिए, और 4 महीने वहाँ रहा करते थे। तो अद्वैताचार्य भी जाया करते थे, तो उस समय कितने और वृद्ध हुए होंगे, और उस समय कोई रेलगाड़ियां नहीं थी और कुछ नहीं था, पैदल जाया करते थे सारे भक्त। तो अब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को एक ऐसे घटना याद दिला रहे हैं जो शायद अद्वैत आचार्य भूल भी गए होंगे। ऐसे हर एक भक्त के साथ महाप्रभु ने ऐसे ही किया, महाप्रकाश लीला में सारे पुरानी पुरानी घटनाओं को याद दिलाया उनको। तो अद्वैत आचार्य से कहने लगे कि अद्वैत, क्या तुम्हें याद है कि बहुत साल पहले तुम एक बार उपवास कर रहे थे और मैंने तुम्हें भोजन खिलाया? और फिर इसका स्पष्टीकरण करने लगे महाप्रभु कि मेरे प्राकट्य के पहले ही तुम भगवत गीता का पाठ करते थे और तुम इस तरह से व्याख्या करते थे कि हर एक श्लोक का जो अर्थ है उसे तुम कृष्ण की भक्ति से जोड़ देते थे। ये तुम्हारा तात्पर्य हुआ करता था, हर एक श्लोक में तुम कृष्ण भक्ति देखते थे और ऐसे ही तुम्हारी व्याख्या होती थी। और इससे मैं बड़ा प्रसन्न होता था क्योंकि भगवत गीता का सार तो है ही कृष्ण की भक्ति, और ये एक महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग गीता आदि पढ़ते हैं या कभी नहीं भी पढ़ते हैं और इस गलत निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि गीता का सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते, महाफलेषु कदाचन, नहीं, केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल हमें कर्म करने चाहिए। और उसके बाद है महाफलेषु कदाचन, कि फल से आसक्त न होना, और उसके आगे चल के बात है यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद, कि जो जो भी तुम करोगे मुझे अर्पण करके करो। उसके बाद फिर आता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, फिर मन मना भव मत भक्तो मद्याचि माम नमस्कुरु। तो क्रमशः यदि हम भगवद गीता को समझने जाए, जिन तथ्यों का उल्लेख श्री कृष्ण ने किया है, तो अंततः वह भक्ति के निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं। वैसे भगवद गीता के हर एक अध्याय में, हर एक पन्ने में, हर एक श्लोक में भक्ति ही है, और केवल वैष्णव ही हैं जो इसको भलीभांति जानते हैं। और अद्वैत आचार्य जैसे वैष्णव भला कौन हो सकता है? तो ऐसे अद्वैत आचार्य कभी व्याख्या करते थे, कभी कभी लोग इस बात को समझते थे, कभी नहीं समझते, कभी लोग स्वीकार करते, कभी नहीं करते, लेकिन अद्वैत आचार्य सत्य बोलने से हटते नहीं थे। और कभी कभी ऐसे होता था कि अद्वैत आचार्य जब पाठ करते थे गीता का, तो कभी कभी उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी। कोई श्लोक को पढ़ते थे और ये नहीं जान पाते थे कि इस श्लोक का संबंध भक्ति से कैसे है, और फिर वो थोड़ा बहुत निराश हो जाते थे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। और उस समय वो भगवद गीता के श्लोक को दोष नहीं देते, भगवान को दोष नहीं देते थे, गीता को दोष नहीं देते थे कि गीता ऐसे ग्रंथ है, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे है, कि नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो सोचते थे कमी मुझ में है, मैं भक्त नहीं हूं, इसलिए मैं इन श्लोकों में भक्ति का निष्कर्ष नहीं ढूंढ पा रहा हूं, मुझे संबंध भक्ति का इस श्लोक में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कभी कभी, बल्कि अक्सर जब ऐसे होता था, तो तपस्या करने बैठ जाते थे, और उनकी तपस्या क्या थी कि वो उपवास करते थे। तो महाप्रभु कहने लगे कि अद्वैत, तुम नहीं जानते कि मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, और मेरे भक्त जो मुझे खिलाते हैं वही मैं खा लेता हूं, अश्नामी प्रयतात्मना, मैं वही स्वीकार करता हूं जो मेरे भक्त अर्पण करते हैं मुझे, और जब मेरा भक्त उपवास करता है तो मैं भी उपवास करता हूं। तो तुम जब उपवास करने लगे तो मैंने भी उपवास किया वैकुंठ में, और फिर तुम्हारा दुख मुझे सहन नहीं हुआ, फिर तुम ऐसे निराश अवस्था में सोए थे क्योंकि तुम्हें उस गीता का एक श्लोक समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, तो मैं तुम्हारे स्वप्न में प्रकट हुआ। स्वप्न में आके मैंने तुम्हें उस गीता के श्लोक का सही अर्थ बताया और तुम नींद से जागे और तुमको पता नहीं चला कि मैं स्वयं आया था। तुमने सोचा कि वो स्वप्न था और स्वप्न में तुम्हें वो साक्षात्कार हो गया। और एक बार नहीं, अनेक बार ऐसे हुआ और हर घटना का याद दिलाया महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को। इस दिन, इस समय, इस श्लोक के बारे में आपको कोई परेशानी थी और उस दिन रात को मैं आया, फिर दूसरे दिन इस तारीख को, इस समय आप ये श्लोक पढ़ रहे थे और आपको इस समय ऐसे कठिनाई हुई समझने में इस श्लोक को, और उस रात को भी मैंने आया और मैंने ये व्याख्या की उस श्लोक के बारे में। ऐसे अनेक श्लोकों के बारे में एक के बाद एक चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बताते गए और सारे वैष्णव वहां बस चकाचौंध रह गए कि कैसे संभव है ये सब। ये तो साक्षात अंतर्यामी श्री कृष्ण है, इसलिए तो संभव है। लेकिन हे अद्वैत आचार्य, महाप्रभु आगे कहने लगे, यद्यपि मैंने इतने सारे श्लोकों का वर्णन किया, इसकी सही व्याख्या क्या है ये बताई तुम्हें, फिर भी एक श्लोक बाकी था जिसकी व्याख्या या जिसका स्पष्टीकरण मैं पूरी तरह से नहीं कर पाया, तो वो मैं आज कर पा रहा हूं। तुम्हें याद है वो गीता का श्लोक 13वें अध्याय का 14वें श्लोक में, सर्वतः पाणि पादम तत्, जिसमें परमात्मा का वर्णन है कि किस तरह से परमात्मा सर्वव्यापी हैं और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उनके जो पाणि पादम तत् सर्वतः, उनके हाथ, उनके पैर सर्वतः हैं, सर्वत्र हैं, साथ साथ में उनके कान, उनके मुख, उनके सर, वो सब जगह हैं। तो ये कैसे हो सकता है तुम समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं हे अद्वैत कि वास्तव में इसका सही पाठ सर्वतः पाणि पादम तत् नहीं है, सर्वत्र पाणि पादम तत् है। क्योंकि सर्वतः और सर्वत्र में एक सूक्ष्म अंतर है। सर्वतः का तात्पर्य होता है कि सब कुछ से ये उत्पन्न हुआ है, लेकिन सर्वत्र का मतलब है कि सब जगह भगवान ऐसे परमात्मा रूप में विराजमान है। और महाप्रभु ने और व्याख्या की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं अपनी टीका में कि महाप्रभु बतलाना चाहते थे कि श्री कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है और वो अपने सच्चिदानंद रूप में ही सर्वत्र उपस्थित हैं, सब जगह वो उपस्थित रहते हैं। तो भगवान का रूप जहां भी है वो सच्चिदानंद रूप ही है। तो इस तरह के शिष्य अद्वैत आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु के। यद्यपि जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त की लीला कर रहे थे तो वो अद्वैत आचार्य को अपना प्रभु मानते थे, क्योंकि आयु में बड़े थे, दीक्षा से भी बड़े थे, वो उनके गुरु के गुरु भाई थे, तो ऐसे वो सम्मान दिया करते थे। परंतु अद्वैत आचार्य को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से जानते थे कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण और मैं इनका दास हूं। लेकिन अब महाप्रकाश लीला के समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की भूमिका निभा के भगवान अपने भगवत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अद्वैत आचार्य को अपना शिष्य स्वीकार किया। तो यह है अद्वैत आचार्य की महिमा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो अद्वैत आचार्य को और चैतन्य महाप्रभु को ठीक से नहीं जानते, नहीं उनके संबंध को जानते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको जाति गोसाई कहते हैं, ये भी एक प्रकार का अपसंप्रदाय है। अपसंप्रदाय अर्थात जो कहते हैं कि हम इस संप्रदाय में हैं, परंतु उनके विचार, उनके जो सिद्धांत हैं, वो संप्रदाय से कुछ अलग हैं। गलत सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया हुआ है, इसलिए ये अपर संप्रदाय कहते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे भी एक अपर संप्रदाय है जाति गोसाई। भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे 13 कम से कम 13 अपर संप्रदायों को ढूंढ निकाला था उनके समय में, जैसे प्राकृत सहजीय, आउल, बाउल, कर्ता भज, साखी भेकी इत्यादि। ये हरे प्रत्येक अपसंप्रदाय की विशेषताएं रहती थी कि विशेष ढंग से ये संप्रदाय के सही सिद्धांतों से अलग हो गए थे। तो जाति गोसाई भी एक प्रकार का अपसंप्रदाय है, जिसमें वो लोग सोचते हैं कि केवल शौक्र संप्रदाय से ही अधिकार आगे चलता है, अर्थात यदि केवल मेरे पिताजी गुरु थे तो मैं गुरु हो सकता हूँ, और कोई गुरु नहीं हो सकता मेरे बाद, और मेरा बेटा मेरे पास में वैष्णव, मेरे बाद में वैष्णव गुरु होगा, वही शिष्य स्वीकार कर सकता है। वही ऐसे जो सही ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं और जिनके पिता ऐसे आचार्य थे, वही मात्र आचार्य बन सकते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत तो ऐसे नहीं है। महाप्रभु का सिद्धांत है किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शय गुरु है। कोई शूद्र हो, कोई सन्यासी हो, कोई विप्र हो, कोई भी क्यों न हो, यदि वो व्यक्ति कृष्ण तत्व को भली भांति जान लेता है तो वो गुरु है। लेकिन ये जाति गोसाई के लोग ऐसे कहते हैं कि केवल जन्म ही हमारा अधिकार है। तो अद्वैत वंशी, नित्यानंद वंशी ऐसे जाति गोसाई भी हैं। जो लोग नित्यानंद प्रभु के वंश में आते हैं, धीरे आगे चल के उनका पतन हो गया और वो भी जाति गोसाई के गलत सिद्धांत के शिकार बन गए। उसी तरह से अद्वैत आचार्य जो गृहस्थ थे, उनके भी वंशज आगे थे, वो लोग भी इस गलत सिद्धांत के शिकार बन गए। और आज तक भी अद्वैत वंशी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ही वास्तव में सही वंशज हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के रक्षक हम ही हैं। और अद्वैत आचार्य के जो वंशज हैं, यहाँ तक वो गलत बात करते हैं कि वास्तव में अद्वैत आचार्य परम सत्य हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके सेवक हैं, और इसलिए उनके ऊपर ये एक श्राप जैसे हुआ कि वो स्मार्थ ब्राह्मण बन गए। स्मार्थ ब्राह्मण मतलब जो कर्मकांडी प्रकार के हैं और जो प्राय मायावादी हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस लीला से हमें सही समझ लेना चाहिए कि अद्वैत आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध क्या है। तो ये सुंदर घटना हो गई, सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। अद्वैत आचार्य ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया और एक के बाद उन्होंने भक्तों को बुलाया, तुम आओ, अब जो मन में तुम्हारी इच्छा है मांगो मुझसे, आज मैं वर प्रदान करने वाला हूँ सबको। तो कोई उनके सामने आया और कहने लगा कि मेरी पत्नी भक्त नहीं है, जरा मेरी पत्नी को भक्त बनाइए, तथास्तु। कोई कहने लगा मेरे पति भक्त नहीं है, कोई नौकरानी थी वो कहने, मेरे पति भक्त नहीं है, उनको भक्त बनाइए, तथास्तु। कहने लगे कोई कि मेरा बेटा जो है वो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, कोई कहने लगा मेरा पिता ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, उसको भक्ति प्रदान कीजिए। तो महाप्रभु उस समय महाप्रकाश लीला में तथास्तु कहते गए, ठीक है ठीक है ठीक है, वरदान ऐसे देते गए। तो जितने भी इच्छाएं भक्तों की थी वो सब एक से एक पूछने लगे, मेरे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा को बढ़ाइए, कोई कहने लगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है तथास्तु। ऐसे भक्ति से संबंधित सभी लोग पूछने लगे। तो यह आज गौर पूर्णिमा है, महाप्रभु महाप्रकाश लीला तो नहीं कर रहे हैं प्रकट रूप से यहाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि महाप्रकाश लीला का वर्णन हो रहा है और आज वैसे भी गौर पूर्णिमा है, तो आप भी श्री गौरांग महाप्रभु से जी भर के आपकी जितने भी इच्छाएं हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई गलत इच्छा नहीं, गलत चीज नहीं पूछिए। भक्ति से संबंधित इच्छाएं कि आपके कितने रिश्तेदार हैं, आपके कितने मित्र हैं, आपके जो भी हैं सगे संबंधी हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके बारे में पूछिए, उनको भी भक्त बनाइए। आप आज प्रार्थना कर ही डालिए चैतन्य महाप्रभु के सामने। और ऐसे कहा जाता है कि जन्मदिन के दिवस पर, जन्मदिन पर कोई भी व्यक्ति बड़ा उदार हृदय का रहता है। तो आज महाप्रभु का जन्मदिन है और वैसे भी महाप्रभु उदार हैं, तो आज के दिन तो और भी परम उदार हैं। तो अवश्य जितने भी आपकी इच्छाएं हैं वो आज अवश्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण होंगी। शायद आपने पूछ भी लिया होगा अभी तक। मन में तो कोई लिस्ट होगा ना कई लोगों का, इनको बनाइए भक्त, इनको बनाइए, उनको बनाइए। हाँ, हमें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, हमें भी आप भक्त बनाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो इसके बाद एक उनके भक्त को उन्होंने नहीं बुलाया था जिनका नाम था मुकुंद। अब मुकुंद कहीं पीछे थे, स्वभाव से बड़े नम्र थे, और जब तक उनको नहीं बुलाया महाप्रभु ने तब तक वो सामने आए नहीं। तो वैष्णव जो होता है वो हर बार अपने आप को सामने रखना पसंद नहीं करता, मतलब वो प्रतिष्ठा आदि के पीछे नहीं रहता है। यदि दैव से उसे ऐसी सेवा करनी पड़ती है तो वो रह जाता है, परंतु इसकी अभिलाषा नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता है कि लोग मुझे देखें, मुझे सुने, मुझे जाने, मुझे पहचाने। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना वैष्णव नहीं करते हैं। तो मुकुंद एक ऐसे आदर्श वैष्णव थे, वो पीछे पीछे थे। तो श्रीवास ठाकुर ने जाके श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप तो सभी को बुला रहे हैं और सबको बुला चुके हैं, परंतु मुकुंद को आपने नहीं बुलाया। मुकुंद ने कौन सा अपराध किया है आपके प्रति? वैसे मुकुंद आपके लिए इतना प्रिय है और हम सबके लिए प्राण धन है। और मुकुंद जब भजन गाता है, जब कीर्तन करता है, तो कौन ऐसे व्यक्ति है जिसका हृदय पिघल नहीं जाता है? और हम तो नहीं जानते कि मुकुंद ने कोई ऐसे अपराध किया होगा। मुकुंद की भक्ति के बारे में कौन क्या कह सकता है? इतना हृदय पूर्वक वो कृष्ण की सेवा करता है, वो आपकी सेवा करता है। तो यदि उसने कोई अपराध किया हो तो बताइए कि कौन सा अपराध किया है और उसे दंड दीजिए। परंतु अपराध किए बिना उसे ऐसे दंड देना कि उसको दूर रखना और उससे बात नहीं करना, उसकी उपेक्षा करना, इस प्रकार से इसका क्या अर्थ है हम समझ नहीं पाए हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, परंतु आपके इस कार्य को हम समझ नहीं पाए हैं। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो कहने लगे कि उस व्यक्ति की बात मेरे सामने नहीं करना, वो मुकुंद है, जैसा सामने प्रतीत होता है वैसे नहीं है वो। तो अद्वैत आचार्य कहने लगा, हमने तो ऐसे कपटी भाव कभी भी नहीं देखा है मुकुंद में, वो छल और कपट से तो हमेशा दूर ही रहता है, इतना भोला भाला सीधा है। लेकिन आप भले जाने कैसे, हम तो नहीं देखते ऐसे कोई दुर्गुण उसके अंदर। तो महाप्रभु कहने के, नहीं नहीं तुम नहीं जानते, वो कभी आके अपने दांतों में तृण धारण कर लेता है और कभी कभी हाथ में लाठी लेके आक्रमण करता है। तो ऐसे तृण और लाठी वाला आदमी है ये। तो क्या मतलब, हम समझते नहीं, क्या बता रहे हैं आप? तो महाप्रभु कहने लगे कि जब वो भक्तों के साथ में रहता है तो यहाँ भक्ति का गुणगान करता है, कृष्ण का गुणगान करता है कि खूब कीर्तन भजन करता है, और फिर जाके योग वाशिष्ठ की कथा करता है अद्वैत के साथ में जाके, या उनके साथ में जाके मायावाद की बातें करता है, क्योंकि योग वाशिष्ठ नाम के ग्रंथ में मायावादी सिद्धांत है जिसमें भगवान को निराकार माना जाता है और ये कहा जाता है कि हम भी भगवान हैं और जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसमें हम भी लीन हो जाएंगे निराकार ब्रह्म ज्योति में। तो ये मुकुंद वहां जाता है, योग वशिष्ठ की चर्चा करता है और वहां उनकी तरह बात करता है, यहाँ आता है तो हमारी तरह बात करता है, तीसरे जगह जाता है किसी और अन्य संप्रदाय में, वहां उनकी तरह बात करता है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत क्रोधित हूं। मुकुंद ये सब सुन रहे थे और महाप्रभु ने जानबूझकर ऐसे कहा ताकि वो सुने। फिर मुकुंद को याद आया, वैसे अभी की बात नहीं है, वो पहले की बात थी वास्तव में, लेकिन महाप्रभु सब जानते हैं ना, त्रिकालज्ञ हैं महाप्रभु। तो वैसे पहले फिर मुकुंद सोच लगे, हाँ पहले की बात है, मेरे एक तथा कथित गुरु थे, उन्हें मुझे गुमराह कर दिया था और मायावाद सिद्धांत में मुझे वो प्रचार कर रहे थे मुझे, तो हाँ चैतन्य महाप्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं है। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से पूछा कि उनसे पूछिए, महाप्रभु से पूछिए कि क्या मेरे लिए कोई आशा जीवन में है, क्या मैं कभी महाप्रभु का दर्शन पाऊंगा, कभी ऐसे समय आएगा कि मैं महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर लूं। और फिर मुकुंद वहां रोने बैठ गए, सारे भक्तों का हृदय टूट गया। फिर श्रीवास ठाकुर आए महाप्रभु के पास मुकुंद का प्रश्न लेकर, और मुकुंद के प्रश्न को जब कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसे अवश्य मेरा दर्शन मिलेगा लेकिन कोटि कोटि जन्मों के बाद, कोटि जन्मों के बाद मिलेगा। तो मुकुंद ने बात सुन ली, सारे भक्त तो निराश हो गए कि ऐसा इतना कठोर क्यों है महाप्रभु। वास्तव में मुकुंद का संगीत इतना मधुर हुआ करता था कि सारे भक्तों का और महाप्रभु का हृदय भी पिघल जाता है। और वो प्रसिद्ध थे अपने मधुर भजनों के लिए, कीर्तन के लिए। तो जब ऐसे महाप्रभु ने कहा तो सारे भक्त उदास हो गए, लेकिन मुकुंद उदास नहीं हुए, बल्कि मुकुंद कूद कूद के छलांग मारते हुए, केवल एक कोटि जन्म, केवल एक कोटि जन्म, केवल एक कोटि जन्म, निश्चित ही मुझे महाप्रभु का दर्शन होगा होगा, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि केवल एक कोटि एक करोड़ जन्मों के बाद मुझे महाप्रभु का दर्शन अवश्य होगा। महाप्रभु ने अवश्य शब्द का प्रयोग किया है, अवश्य मुझे दर्शन मिल जाएगा। तो ये सुनकर सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए, अरे, और महाप्रभु का हृदय पिघल गया। तो महाप्रभु ने मुकुंद को बुलाया कि मुकुंद आओ आओ, अब तुम्हारे सारे अपराध जो हैं वो खत्म हो गए, एक क्षण में खत्म हो गए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे वचनों के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा है कि तुमने पूरा विश्वास कर लिया कि मैं जो कह रहा हूं वो निश्चित ही घटने वाला है। मैंने कहा कि 1 करोड़ सालों के बाद तुम्हें मेरा दर्शन होगा और तुमने विश्वास किया कि होगा अवश्य, इसलिए इस श्रद्धा से तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। वैसे जो अपराध तुमने किए थे उनके वजह से मेरा दर्शन तुम्हें पाने के लिए 1 करोड़ जन्म लगने वाले थे, साधारण गणना से देखा जाए तो, परंतु तुम्हारे इस भाव से, इस आतुरता से, इस श्रद्धा से वो 1 करोड़ जन्म अब एक क्षण में खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अरे मुकुंद, बुरा नहीं मानना, तुम तो मेरे नित्य पार्षद हो, मेरे नित्य सेवक हो, जहां भी मैं प्रकट होता हूं तुम भी प्रकट होते हो मेरे साथ में और तुम कीर्तन करते हो, बल्कि तुम जब कीर्तन करते हो तो मैं तुम्हारे जीभ पर प्रकट होता हूं और इस प्रकार से तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं कि तुम्हारे कीर्तन और मधुर भजनों के द्वारा तुम सबके हृदय में भक्ति भाव जागृत कर दो। तो आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया मुकुंद। तुम बिल्कुल सफल हो, तुम्हारा जीवन में तुम्हारे कोई अब दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं रह गए तुम्हारे। तो उस समय मुकुंद कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो एक नीच एक व्यक्ति हूँ, कीड़े के समान भी नहीं हूँ, लेकिन आप इतने कृपालु हैं कि आपने मुझे दर्शन दिया है अभी। परंतु आपने कहा, ठीक कहा, कि मैं भक्त नहीं हूँ, मुझे भक्ति में श्रद्धा नहीं है। जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को समझा रहे थे वो दांतों में तृण और लाठी की बात, तो वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति वैष्णव होता है वो नम्र होता है, इसलिए दांतों में तृण धारण कर लेता है। परंतु जो मायावादी होता है, जो भगवान के रूप को, उनके आकार को, उनके अस्तित्व को ही नकार देता है और ये कुछ कहने की चेष्टा करता है कि भक्ति से भी श्रेष्ठ कुछ और है, तो वो वास्तव में मुझ पर एक छड़ी लेकर या लाठी लेकर प्रहार कर रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि भक्ति से श्रेष्ठ कोई और पद्धति है, जैसे कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो या जो भी कुछ, तो ये वास्तव में भगवान के ऊपर प्रहार है। तो क्योंकि मुकुंद अब पहले जाया करते थे, योग वासिष्ठ आदि सुनते थे जिसमें ये बतलाया जाता है कि भक्ति से भी श्रेष्ठ ज्ञान आदि है, तो मुकुंद कहने लगे, मैं तो भक्त नहीं हूँ और भक्ति के पथ को तो मैंने स्वीकार नहीं किया था, तो फिर आपका दर्शन लेने से भी मैं पूरा फायदा नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में भक्ति नहीं है, मैं भक्ति को मानता नहीं हूँ। फिर मुकुंद कहने लगे, श्री कृष्ण पांडवों के दूत बने और युधिष्ठिर महाराज के निवेदन पर वो धृतराष्ट्र के सभा में गए दुर्योधन के सामने एक शांति का प्रस्ताव रखने के लिए गए। शांति दूत बन के वो गए और वहाँ जब पहुँचे, युधिष्ठिर महाराज का प्रस्ताव था कि दुर्योधन आधा राज्य हमें दे दो, आधा तुम ले लो, वैसे तो हमारा अधिकार संपूर्ण राज्य का है, हमारा वनवास भी समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें हमारा संपूर्ण राज्य लौटाना चाहिए, परंतु आप हम सब भाई भाई हैं और हमें प्रेम से रहना है, इसलिए कोई बात नहीं, संपूर्ण राज्य नहीं भी लौटाओगे तो आधा राज्य दे देना, आधा तुम रखना। तो ये प्रस्ताव लेके श्री कृष्ण आए, युधिष्ठिर महाराज का प्रस्ताव था। लेकिन वहाँ पे दुर्योधन ने श्री कृष्ण की एक नहीं मानी, बल्कि उनका अपमान किया और उनको गिरफ्तार करना चाहते थे दुर्योधन, इतने मूर्ख थे दुर्योधन। और श्री कृष्ण तो जान पाए, तो श्री कृष्ण ने उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया वो विराट रूप नहीं, क्योंकि युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो रूप मैं अब तुम्हें दिखा रहा हूँ वो पहले किसी ने नहीं देखा है। तो विराट रूप भी होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था वो सबसे विस्तार में था, अधिक से अधिक विस्तार में। लेकिन दुर्योधन को भी दिखाया, एक भयंकर रूप दिखाया, विराट रूप, और उनके शरीर से अंगूठे की लंबाई में अनेक सब लोग आए, अंध, वृष्णि, ये सारे वंश के लोग सब बाहर आए और आग वगैरह सब देखने लगे दुर्योधन। दुर्योधन वहाँ हैरान हो गए, बड़े घबरा गए, और उस समय श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन भी वापस ले लिया। तो मुकुंद वहाँ कहने लगे कि दुर्योधन ने प्रत्यक्ष आपका सुंदर रूप सामने देखा, उसने आपका विराट रूप का दर्शन भी किया, लेकिन क्या फर्क पड़ा दुर्योधन को, उसने आपकी सेवा तो नहीं की, बल्कि उसके हृदय में आपके प्रति और आपके भक्तों के प्रति ईर्ष्या और घृणा बढ़ते गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी का अपहरण करने के लिए कौंडिन्यपुर अमरावती के पास में आए तो उस समय शिशुपाल, रुक्मी और अन्य जो राजाएं थे, जो राजकुमार थे और राजाएं थे, उन्होंने श्री कृष्ण को सामने देखा, गरुड़ के ऊपर सवार थे, उनका सुंदर रूप भी देखा, परंतु रूप देखने से क्या फायदा हुआ उनको? कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं थी, इसलिए उनका द्वेष बढ़ गया भगवान के प्रति और वो भगवान से युद्ध करने आ गए और हार गए भगवान के सामने। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण ने सर्व यज्ञमय रूप वराह देव का स्वीकार किया और पृथ्वी देवी को बचाने के लिए गर्भोदक सागर में आए, वो हिरण्याक्ष ने उनका दर्शन किया, लेकिन उनके भी हृदय में कोई भक्ति नहीं थी। इसी तरह से आवाज करते हुए वराह देव के प्रति आक्रमण करने के लिए हिरण्याक्ष निकल पड़े। ये आधुनिक राक्षस से पीछे जा रहे हैं, भयंकर आवाज करते हुए जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके वध कर दिया हिरण्याक्ष का। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद के प्रति बहुत अत्याचार किए, परंतु आप प्रकट हुए, आपका दर्शन हिरण्यकश्यपु ने किया, परंतु क्या लाभ हुआ हिरण्यकश्यपु को? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं थी, वो आपके प्रति प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर पाया और आपको वध करना पड़ा उसका। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं, और मेरे हृदय में भी आपके प्रति भक्ति तो है नहीं। शिवजी, आपके भक्ति के कारण ही पार्वती देवी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाए। आपने जब शिवजी से कहा था कि अभी आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, तो उस समय शिवजी ने कहा था कि हे प्रभु, मेरे ऊपर ये कृपा करें कि मुझे ऐसे है वैसे ही रहने दें, क्योंकि मैं अभी आपके नाम कीर्तन में, आपके गुणगान में, आपकी सेवा में इतना मग्न हूँ और इसमें मुझे इतना आनंद आता है कि जब इन कार्यों को मैं रोक देता हूं तो मेरा आनंद भी रुक जाता है। परंतु फिर भी, फिर भगवान के कहने पर शिवजी ने पार्वती देवी से, गौरी देवी से विवाह कर लिया। उसी प्रकार वो कहने लगे कि नारद जी, उन्होंने भी आपके भक्ति के कारण ही आपका वो दर्शन किया, और ऐसे अनेक उदाहरण मुकुंद एक के बाद एक देते गए। व्यास देव जी भी बड़े उदास थे, परंतु जैसे ही उन्होंने आपकी भक्ति का वर्णन करना शुरू कर दिया नारद मुनि के आदेश अनुसार, तो उनका हृदय पुनः प्रफुल्लित हो गया और मुकुंद ऐसे कहने लगे कि केवल दर्शन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि आपके हृदय के, आपके प्रति हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए, जो मेरे हृदय में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय बड़े प्रसन्न होकर उत्तर देने लगे और वो कहने लगे कि मुकुंद, तुम जो भक्ति के बारे में कह रहे हो वो बहुत सही है। वास्तव में यदि कोई मेरा दर्शन करता है, परंतु यदि उसके हृदय में भक्ति नहीं है मेरे प्रति, तो ये दर्शन भी उसे परिपूर्णता के अवस्था को नहीं ले जा पाएगा। दूसरे शब्दों में, केवल भगवान का दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान की प्रेममयी सेवा करना। जो व्यक्ति भगवान के प्रेममयी सेवा करता है, वो सेवा के माध्यम से ही भगवान का दर्शन करता है, वो सेवा ही दर्शन है भगवान का। और जो व्यक्ति भक्तिहीन भाव से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर भी लेता है, तो ऐसे दर्शन उसके लिए व्यर्थ के ही बराबर है। और फिर श्री कृष्ण को कहने लगे, श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि जब मैं गया था मथुरा और वृंदावन, जब मैं वहाँ लीला कर रहा था, तो वहाँ की जो यज्ञ पत्नियाँ हैं, मथुरा की नारियाँ हैं और अनेक और जो हैं जो कृष्ण की भक्ति करते थे, उन्होंने अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर ली। जैसे यज्ञ पत्नियों ने श्री कृष्ण के लिए प्रसाद अर्पण किया और मथुरा के जो निवासी स्त्रियां थीं, उन्होंने ऊपर से बड़े भक्ति भाव से फूलों की वर्षा की और ऐसे फूलों की वर्षा करके श्री कृष्ण की सेवा की। तो भगवान बता रहे थे कि इसके कारण उनको मेरा दर्शन प्राप्त हो पाया। फिर सुदामा नाम का एक मालाकार था जो मथुरा में रहता था, जब श्री कृष्ण वहाँ पे गए तो उन्होंने अर्घ्य और चंदन आदि से, फूलों से उनकी सेवा की और उनको कपड़े आदि भी दिए, फूल आदि भी दिए। ये सुदामा, सुदामा विप्र से अलग हैं, जो उनके सहपाठी थे गुरुकुल में, वो अलग सुदामा थे। तो ये मथुरा के सुदामा जो एक मालाकार थे। तो ऐसे इन भक्तों ने, मुकुंद भी आगे कहने लगे कि इन भक्तों ने आपकी सेवा की और उनका जीवन सफल हो गया। परंतु कंस आपके मामा थे, लेकिन उसका वध आपको करना पड़ा। फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हाँ ये सही है, जब कृष्ण मथुरा में गए थे तो उस समय एक रजक था, रजक मतलब धोबी। तो उस धोबी से जाके श्री कृष्ण ने पूछा कि ये कंस के कपड़े मुझे दे दो, मुझे पहनना है। तो धोबी ने ठीक से जवाब नहीं दिया, कपड़े भी नहीं दिए और उल्टा जवाब दे दिया। तो श्री कृष्ण ने केवल अपने कोमल कर कमलों से उसकी गर्दन काट दी, उसका वध कर दिया और उसका उद्धार भी कर दिया वध के साथ साथ। तो ऐसे महाप्रभु कहने लगे कि भक्ति की शक्ति ऐसे होती है और भक्तिहीन भावना से दर्शन करना भी निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। परंतु तुम ऐसे नहीं हो मुकुंद, तुम तो मेरे नित्य पार्षद हो, तुम मेरे बहुत ही शुद्ध भक्त हो और मैं ये तुम्हें वचन देता हूँ कि जहाँ भी तुम कीर्तन करोगे मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। तो मुकुंद के ऊपर ऐसी कृपा जब की महाप्रभु ने, तो सारे भक्तों ने पुनः जय जयकार करना आरंभ कर दिया और ऐसे भगवान की महाप्रकाश लीला चलती गई और अनेक भक्तों को उन्होंने के ऊपर उन्होंने कृपा प्रदान की और पूरे 21 घंटे ऐसे बीत गए, 7 प्रहर। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 7 प्रहरीय भाव की लीला को समाप्त कर दिया। तो अगले साल गौर पूर्णिमा की कथा जब होगी तो महाप्रकाश लीला के बाद कौन सी लीलाएं हुई उनका वर्णन उस समय करेंगे। यदि आपको जानना है कि भगवान ने कौन सी लीलाएं की, या तो आपको ग्रंथ पढ़ना है या आपको अगले साल तक प्रतीक्षा करनी है। अच्छा है आप प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते रहिए ताकि साल भर भी आप भगवान की लीलाओं के ऊपर चिंतन मनन करते रहेंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो क्या आपके कोई प्रश्न हैं? माइक कहाँ है? क्या चीज? जप करना, जप करना तो बिल्कुल उचित है। चैतन्य महाप्रभु भी किया करते थे और आचार्यों ने आदेश दिया है कि हम सबको जप करना चाहिए बड़े ध्यान पूर्वक। हाँ जी,
हरे कृष्ण। जब बता रहे थे कि वो जो भी ऐसे सोचते हैं कि ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ है तो लाठी से मारना,
समझे? भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना अर्थात भक्ति मार्ग को स्वीकार करना ही सर्वश्रेष्ठ पथ है। और जो इस भक्ति के पथ को छोड़कर कोई व्यक्ति यदि कहे कि दूसरा कोई पथ है भगवान की प्राप्ति के लिए वो सही है, तो ये भगवान के ऊपर प्रहार करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन पथों में कुछ न कुछ एक स्वार्थ की मिलावट होती है। कर्म के मार्ग में लोग स्वार्थी होते हैं, वो भोग करना चाहते हैं, धर्म को एक भोग का वाहन बनाना चाहते हैं। जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनकी इच्छा होती है कि मैं निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊं और दुनिया के दुखों को मिटा दूं हमेशा के लिए। तो उनकी अपनी इच्छा होती है कि मेरे जीवन के दुख मिट जाएं, ये भी एक स्वार्थ है। जो योग मार्ग में होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम या तो भगवान में लीन हो जाएं या तो ऐसी सिद्धियां हम प्राप्त करें जिनसे हम अन्यों को वश में कर पाएंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो बिल्कुल निष्काम होता है, जो शुद्ध कृष्ण भक्त होता है, किसी भी तरह का स्वार्थ उसके हृदय में नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि ज्ञान योग आदि के पथ में लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके रूप को, उनके आकार को नकारते हैं। वो कहते हैं कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान केवल एक निराकार प्रकाश है। तो यदि हम कहें कि आप कोई व्यक्ति ही नहीं है तो ये आपके प्रति एक अपमान है ना, एक प्रहार करने के बराबर है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते थे कि ने ऐसे कहा कि जो व्यक्ति ये स्वीकार करता है या ऐसे कहता है कि भक्ति से श्रेष्ठ कोई पथ है तो वो प्रहार करता है मुझ पर। ठीक है, हाँ ठीक है, कब पूछ।
महाराज, जैसे कल हमने सुना कि कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कह रही थी कि जन्म मनुष्य शुद्ध विषय, कि जो चार तरह से हमें साधन मिलते हैं कि अच्छे कुल में या ज्ञान और सौंदर्य या धन होना, तो ये भक्ति के मार्ग में बाधा है। और ऐसा भी सुनते हैं कि अगर भक्ति कभी हमारे से अपूर्ण होती है तो हमें अगला जन्म इन चारों स्थानों में से मिलता ही नहीं, अच्छा सुंदरता मिलती है या धन मिलता है या, तो ये भक्ति का अगर परिणाम है तो फिर उसको कैसे समझे, यही चीज बाद में बाधा बन जाएगी, तो फिर अगर भक्ति अपूर्ण हुई तो उसको फिर।
बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे गति पाने का उद्देश्य, दिलाने का उद्देश्य ये है भगवान के मन में कि कम से कम इस व्यक्ति को जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। एक धनी परिवार में जन्म लेने से आदमी को कम से कम दाल चावल रोटी की इतनी चिंता नहीं करनी है। जो दैनिक आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता है, वो कम से कम आसानी से हो जाएंगी ताकि वो अपना मन अच्छी तरह से भगवान में लगा सके। परंतु हाँ, इसमें धोखा भी है। सही बात है कि इतना ऐश्वर्य पाने के बाद यदि ऐश्वर्य से प्रभावित व्यक्ति हो जाता है, अपने ठाट के जीवन से भगवान को भूल जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसके हृदय में ये भक्ति की प्रवृत्ति है पूर्व जन्म से, तो ये प्रवृत्ति उसको आगे बढ़ाएगी भक्ति में, उसको चैन से बैठने नहीं देगी, वो जाएगा भगवान की ओर। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास के कारण वो विवश होकर भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। और भगवान ये भी कहते हैं, महाप्रभु ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास ये सारे चीजें हैं जो साधारण तौर से बाधक होती हैं भक्ति मार्ग में, इतना सब होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति नम्र है तो हमें जानना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो धनी है, हर एक व्यक्ति जो सुंदर है, हर एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, वो सब भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये एक सर्वसाधारण बात बताई गई है, दुनिया में ऐसे देखा जाता है। फिर भी ऐसे भी कई विशेष व्यक्ति हैं जो कम दिखने में आते हैं लेकिन हैं अवश्य, जो कि ये सब चीजें होने के बाद भी नम्र होके भगवान की तीव्रता से भक्ति करते हैं।
तो फिर हमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो जो धनी परिवार में या बहुत सुंदर है या क्या नाम है, वो उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की और उनको इस तरह से ऐसा जन्म मिला है, लेकिन वो उसका ठीक ढंग से फायदा
नहीं। हर एक व्यक्ति जो धनी परिवार में जन्म ले रहा है या जिसका शरीर सुंदर है या जो बहुत बुद्धिमान है इत्यादि, ये आवश्यक नहीं है कि वो पिछले जन्म भक्त ही था। यदि कोई भक्त अपनी भक्ति को अपूर्ण रखता है इस जन्म में, तो अवश्य अगले जन्म में उसे ऐसे गति मिलती है। परंतु हर एक व्यक्ति जो सुंदर है, धनी है इत्यादि, वो पहले भक्त था, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कोई साधारण भौतिक पुण्य करके भी सुंदर बन सकता है, धनी बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है, ऊंचे कुल में जन्म ले सकता है। तो साधारण पुण्य करने से भी ये लाभ या ये गति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति एक धनी परिवार को प्राप्त करके भक्ति नहीं करेगा, जब तक कि उसके भाग्य में नहीं हो, उसके संस्कार ऐसे नहीं हो पूर्व जन्म से, तब तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण महाराज, आप परसों के दिन बोल रहे थे कि 8 साल पहले जहाँ तक लीला समाप्त हुई थी उसको आप अभी एक्सटेंड करके बता दें, क्योंकि आप थोड़ा हमको याद दिला सकेंगे 50 शब्दों में।
क्या चीज?
क्या हमने 8 साल पहले
हाँ,
चैतन्य भागवत में जहाँ पे स्टॉप हुई थी
हाँ,
वही आपने एक साल किया
हाँ,
तो आप थोड़ा याद दिला सकेंगे हमको क्या करके कि क्या हुई थी 8 साल पहले?
नहीं, वही कथा जब हमने जहाँ से पिछले साल कथा को विराम दिया था वहीं से हमने शुरू किया। संक्षेप में हमने पहले दिन बताया कि कथा कहाँ रुकी थी, कि चैतन्य महाप्रभु गया हो के चले आए, गया से वापस आके उनका जो परिवर्तित रूप था, भक्त की लीला, उन्होंने भक्ति की लीला शुरू कर दी। पहले विद्या रस का स्वाद ले रहे थे, अब भक्ति रस का स्वाद लेने लगे। संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने और फिर भक्तों को इकट्ठा करना शुरू किया, नगर संकीर्तन में जाते थे। और फिर उन्होंने एक दिन कहा कि चलो रात को क्यों बर्बाद करें, रात में भी संकीर्तन करें। तो इस साल की कथा वहाँ से शुरू हुई। ठीक है, योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में भक्ति से भी श्रेष्ठ विधि का वर्णन है, तो ऐसे ग्रंथ की रचना क्यों और किसने की? ऐसे तो अनेक ग्रंथ हैं जिसमें मायावादी सिद्धांतों का वर्णन है, या टीकाएं बहुत लोग लिखते हैं उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर, जिसमें वो ये कहते हैं कि परम सत्य निराकार है और परम सत्य में लीन होना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में भी ऐसे थोड़े बहुत सिद्धांत पाए जाते हैं और लोग उनके ऊपर टीका करके इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर से प्रश्न कहिए। हरे कृष्ण।
जैसे कि जप करने से या सेवा करने से जो हमें प्राप्ति नहीं मिल सकती, पुस्तकों से ज्यादा प्राप्ति हो सकती है भगवान को जानने की, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने के लिए बुद्धि का भी तो होना चाहिए, बुद्धि भी समझने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए।
हाँ, ये सही है। वो पांडित्य या विद्वत्ता सब में नहीं हो सकती, विरला ही किसी में दिखाई पड़ती है। परंतु भगवान ने तो कभी नहीं कहा है कि जो सबसे बड़ा विद्वान है वो मेरे पास आएगा। हाँ, बुद्धि की आवश्यकता है ग्रंथों को समझने के लिए, दर्शन को समझने के लिए। परंतु यदि किसी के पास न भी हो, कम भी हो तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा इस पर निर्भर नहीं होती है कि हमारे भौतिक गुण कैसे हैं, भौतिक बुद्धि कैसी है। यदि हम हृदय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य हमारे जीवन में आएगी, जिससे कि कृष्ण प्रेम का उदय अवश्य हो जाएगा। इसलिए कोई नुकसान नहीं है। यदि कोई सोचे कि मैं किताब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सुन तो सकते हैं, श्रवण करना जरूरी है। हाँ, श्रवण करते रहें बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और कीर्तन भी करना चाहिए साथ साथ। क्या अद्वैत आचार्य महाविष्णु के विस्तार हैं? अद्वैत आचार्य जी ने कि अप्रकट लीला के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, तो उनकी अप्रकट लीला तो ऐसे भगवान हैं तो इसलिए है ही, परंतु वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये उनकी उनके अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य है। भगवान के धाम में पर व्योम में मायापुर और वृंदावन में भक्त लोग कौन सी भाषा में बोलते हैं, वहां जाके आपको सिखाया जाएगा, कोई बात नहीं। जो भी भाषा वो बोलते हैं वहां आप सीख जाएंगे तुरंत, लेकिन वास्तव में देवनागरी संस्कृत भाषा में ऐसे कहते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो वहां भाषा की भी आवश्यकता नहीं है, केवल सोच मात्र से ही सब चलता है। प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने में, संपन्न करने में इतने व्यस्त रहते हैं, तो ये सारे लीलाओं का व्यवस्थापन कौन करता है? हाँ, वृंदा देवी करती हैं, योग माया करती हैं, उन्हीं का उनकी सेवा ही यही है। आजकल इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं ना, जब भगवान ने ऐसे असाधारण लीलाओं को प्रकट किया तो मायावादी लोग कैसे कह सकते हैं कि भगवान का रूप माया का रूप है? हाँ, वो मानते हैं कि वो निराकार ब्रह्म के रूप है, लेकिन वो कहते हैं कि जब शरीर यहां धारण किया वो जड़ पदार्थों का शरीर है, त्रिगुण माया के अधीन शरीर है, ऐसे उनका कहना है। तो यही बातें हैं, इसलिए तो मायावाद का खंडन प्रभुपाद जी ने इतना किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी इतना किया। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, और शिक्षाष्टकम की प्रार्थना में महाप्रभु कहते हैं शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो उन दोनों शून्य में क्या अंतर है? जो यहाँ प्रभुपाद जी के प्रणति में जो शून्यवाद है वो बौद्ध धर्म और अन्य ऐसे धर्मों के दर्शन को इंगित करते हैं या सूचित करते हैं, जिसमें ऐसे बताया जाता, वो बताते हैं कि वैसे सत्य है ही नहीं कुछ, सब कुछ शून्य ही है, न आप हो न हम है न जगत है न कुछ है, सब कुछ शून्य है, केवल माया के कारण हमें ऐसे लगता है कि कुछ है परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो यह है शून्यवाद का सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत ऐसे है। तो इस शून्यवाद और निर्विशेषवाद, मतलब जो निराकारवादी है कि निराकार ब्रह्म ही सत्य है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये निर्विशेषवादी। तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए ये दो प्रकार के गलत सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, एक कि भगवान का कोई रूप नहीं है, और दूसरा कि सब कुछ शून्य है। तो ये सब कुछ शून्य है का जो दर्शन है उसको शून्यवाद कहते हैं, ये गलत सिद्धांत है। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, इसका मतलब है कि गोविंद या श्री कृष्ण के विरह में हमें सारा जगत शून्य ही दिख पड़ता है। वो शून्य अलग है कि भगवान के अलावा क्या किसी चीज का मतलब ही नहीं है, सब कुछ खाली खाली है, शून्य है सब कुछ, इस भाव से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और वास्तव में शून्यवादी लोग इसलिए ऐसा शून्यवाद का प्रचार करते हैं कि उनके जीवन में भी गोविंद नहीं है, गोविंद को उन्होंने दूर रखा है, इसलिए उनका जीवन भी शून्य है। तो शून्यवादी लोग क्या कहते हैं, सब कुछ, अभी गणित का क्लास लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो शून्यवादी लोगों का कथन क्या है, शून्य। फिर उसके बाद आते हैं निराकारवादी, वो कहते नहीं नहीं सब शून्य नहीं है, सब एक है, हम भी एक भगवान, हम भी हम है, सब एक है ना। फिर वैष्णव सिद्धांत क्या है, मध्वाचार्य आए, दो है, जीव और भगवान अलग अलग हैं। और फिर महाप्रभु ने आके कहा नहीं, दो और एक दोनों सही है, दो और एक तीन हो जाते हैं, ये भी सही ये भी सही, दोनों एक साथ में सही। मतलब कि भगवान का एक निराकार स्वरूप भी है और भगवान का एक रूप भी है, जीव भगवान से भिन्न है और अभिन्न भी एक साथ में, अचिंत्य रूप है ये, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तत्व की स्थापना की, ठीक है। तो शून्य, एक और दो, गणित, हरे कृष्णा। ठीक है, अंतिम प्रश्न, ये तो हो गया। हृदय में जो अनर्थ हैं उनकी वजह से नम्र बनना कठिन लगता है। हाँ अवश्य, ये तो सबका अनुभव है ना, कभी कभी बीच में अहंकार आता है ना, ऊपर आता है, नहीं आता,
आता है।
नहीं आप चुप बैठे, मैं सोचा कि सब शुद्ध भक्त हैं, सब किसी को कोई कभी कभी नम्र बनते हैं। तो बद्ध जीव का यह स्वभाव है, लेकिन भक्ति करते करते हृदय स्वच्छ होने लगता है। जैसे जैसे हृदय साफ होता है वैसे वैसे अहंकार आदि सब कम होते जाते हैं। भक्ति की लोलुपता कैसी बढ़ाई जाए, श्रवण कीर्तन करके, भक्तों का संग करके, सेवा करके, जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मार्ग बतलाया है उस पथ पे चलते चलते और भगवान से प्रार्थना करके तीव्रता से कि वो लोलुपता वो लालसा हमें अवश्य प्रदान कीजिए, तो भगवान की कृपा से वो हो सकता है। तो आज के दिन आप जितना हो सके उतनी सेवा कीजिए भगवान की, जप पढ़ाइए, कीर्तन कीजिए, और फूलों की सेवा है और अन्य सेवाएं हैं उनको करिएगा, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त करिए। फिर शाम के समय अभिषेक के लिए आप समय पर आइएगा, 6:30 बजे अभिषेक होगा। हरे कृष्णा, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे।